एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जो हमारी खुशी की जो आम समझ है ना, उसे थोड़ा चैलेंज करती है। मार्टिन सेलिगमन की फ्लोरिश।
बिल्कुल, मतलब अक्सर हम यही सोचते हैं कि बस खुश रहो, लाइफ सेट है, है ना? लेकिन सेलिगमन सवाल उठाते हैं, क्या बस इतना ही? क्या यही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है, या फिर कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा?
हाँ, और ये किताब उसी ज्यादा की बात करती है, वेल बीइंग की, जिसे हम कह सकते हैं संपूर्ण खुशहाली। सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि सच में फलना फूलना।
और आज के टाइम में तो ये बहुत जरूरी हो गया है। नहीं,
हाँ
मतलब इतनी भागदौड़ है, स्ट्रेस है।
बिल्कुल। तो ये समझना कि भाई सिर्फ कभी कभार अच्छा फील कर लेना काफी नहीं है, असल में फ्लोरिश करना क्या होता है, ये जानना जरूरी है। ये किताब एक तरह से कह सकते हैं एक गाइड जैसी है, एक भरपूर जिंदगी के लिए।
तो आज हम इसी गाइड को, इसी नक्शे को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सेलिगमन क्या कहते हैं, उनका वो फेमस परमा मॉडल क्या बला है, और सबसे जरूरी, हम इसे अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें, मार्टिन सेलिगमन।
हाँ बताइए, ये कोई आम साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं?
बिल्कुल नहीं, इन्हें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। सोचिए, मनोविज्ञान की एक पूरी नई फील्ड, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में सालों से काम कर रहे हैं।
हाँ, और इनका सफर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इन्होंने शुरू किया था सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस पर काम करके।
हाँ बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट के लोग कैसे मान लेते हैं कि वो अपनी बुरी सिचुएशन बदल ही नहीं सकते।
लेकिन फिर इनका ध्यान गया कि अगर लाचारी सीखी जा सकती है, तो क्या उम्मीद, क्या ताकतें भी सीखी जा सकती हैं। और यहीं से पूरा फोकस शिफ्ट हो गया, कमजोरियों से हटकर इंसानी ताकतों पर।
और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस किताब में, वो ये है कि वो अपनी ही पिछली थियोरी, ऑथेंटिक हैप्पीनेस वाली, उसकी कमियों को मानते हैं खुलकर।
अच्छा, ये तो बड़ी बात है।
हाँ, वो कहते हैं कि सिर्फ खुशी या लाइफ सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना शायद अधूरा था। ये दिखाता है कि वो एक सच्चे वैज्ञानिक हैं, लगातार सीख रहे हैं, अपने आइडियाज़ को रिफाइन कर रहे हैं, और उनका जो दशकों का रिसर्च है और फिर उसे ग्राउंड पर लागू करना स्कूलों में, आर्मी में, ये उन्हें इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत विश्वसनीय बनाता है।
तो आते हैं किताब पर। फ्लोरिश, इसका एसेंस क्या है, निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि साइकोलॉजी का काम सिर्फ मेंटल इलनेस ठीक करना या दुख कम करना नहीं है।
वो तो आधा काम हुआ।
एग्जैक्टली, आधा काम। पूरा काम तब होता है जब साइकोलॉजी हमें ये भी बताए कि हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल कैसे बनाएं, अपनी जो अंदर की स्ट्रेंथ्स हैं उनको कैसे निखारें, और सही मायनों में फ्लरिश कैसे करें।
और वो कहते हैं कि ये वेल बीइंग, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कई चीजों का मिक्सचर है। उनकी जो पुरानी थ्योरी थी वो खुशी पर बेस्ड थी, जो कि मूड के साथ बदलती है, मापना भी मुश्किल। तो उन्होंने एक नया, ज्यादा मजबूत मॉडल दिया, परमा। पांच पिलर्स हैं इसके।
परमा, PERMA।
हाँ, और ये पांचों जरूरी हैं, अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हें मापा भी जा सकता है। ये सिर्फ हवा हवाई बात नहीं।
और ये सिर्फ पर्सनल लेवल की बात नहीं है ना, वो कहते हैं कि ये स्कूलों, आर्मी, यहाँ तक कि देशों की पॉलिसीज तक को बदल सकता है।
बिल्कुल, ये कोरी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये साइंस पर बेस्ड है। तो चलिए इन पांच स्तंभों को, परमा को, थोड़ा खोल कर समझते हैं।
हाँ हाँ जरूर, पी से शुरू करते हैं। पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भावनाएं, ये तो सीधा लगता है, खुशी, शांति, उम्मीद।
हाँ, ये वही अच्छी वाली फीलिंग्स हैं। लेकिन सेलिगमन कहते हैं कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, इनका एक बड़ा रोल है। ये हमारे दिमाग को खोलती हैं। जब हम पॉजिटिव फील करते हैं तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, नए आइडियाज़ के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ मज़ा नहीं, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए फ्यूल जैसा है।
बिल्कुल। फिर आता है ई, इंगेजमेंट, तल्लीनता।
ये क्या चीज़ है?
ये वो मैजिकल स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, जिसे फ्लो भी कहते हैं।
अरे हाँ, फ्लो सुना है इसके बारे में।
हाँ, सोचिए कोई आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा है, या कोई कोडर है जो कोडिंग में खोया है, या कोई बच्चा खेल रहा है, वो काम आप किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं करते, बस उस काम को करने में ही मजा आता है। एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है इससे।
समझ गया। अगला है आर, रिलेशनशिप्स, रिश्ते। ये तो अपने आप बहुत अहम माना जाता है,
और सेलिगमन भी इस पे बहुत जोर देते हैं। कहते हैं कि इंसान भाई सोशल एनिमल है, गहरे पॉजिटिव रिश्ते हमारी वेल बीइंग की बुनियाद है। सोचिए ना, जिंदगी के जो सबसे अच्छे पल होते हैं या सबसे मुश्किल वक्त, क्या वो अकेले बीतते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं ना, सपोर्ट, कनेक्शन, अच्छा महसूस करना, ये सब रिश्तों से ही तो आता है। सेलिगमन ने तो यहाँ तक कहा है कि दूसरों का होना ही जीवन का सबसे अच्छा बचाव है।
वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है। अब आते हैं एम पे, मीनिंग, अर्थ या उद्देश्य। ये थोड़ा भारी लगता है, क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी किसी ऐसी चीज से जुड़ी हो जो आपसे बड़ी हो। सिर्फ अपने लिए ना जीना,
जैसे
जैसे आपका परिवार, आपकी कम्युनिटी, कोई सोशल कॉज, कोई स्पिरिचुअल गोल, आर्ट, साइंस, कुछ भी जिससे आपको लगे कि आपकी लाइफ का एक बड़ा पर्पस है। ये फीलिंग कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, ये जिंदगी को एक दिशा देती है, संतुष्टि देती है।
महारत, ये क्या सिर्फ सक्सेस या जीतने के बारे में है?
हाँ भी और नहीं भी। ये वो इच्छा है कि हम कुछ अचीव करें, कुछ सीखें, किसी चीज में मास्टर बने, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दुनिया की नजर में ही कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो।
अच्छा,
ये वो अंदर की सेटिस्फैक्शन है जो कोई गोल पूरा करने से मिलती है, चाहे वो कोई मुश्किल रेसिपी बनाना हो, कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो। वो जो फीलिंग आती है ना, मैंने कर दिखाया, वो अपने आप में वेलबींग का हिस्सा है, भले ही कोई अवार्ड मिले या ना मिले।
तो ये हैं पर्मा, पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग, अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब सिर्फ खुशी नहीं, इन पांचों का बैलेंस चाहिए।
बिल्कुल, यही है वेलबींग का पूरा फ्रेमवर्क।
ये तो थ्योरी हुई, पर क्या हम सच में इन चीजों को बढ़ा सकते हैं? मतलब ये तो लगता है कि किसी में होती हैं, किसी में नहीं।
यही तो सबसे सबसे पावरफुल बात है इस किताब की। सेलिगमन कहते हैं हाँ, ये सीखी जा सकती हैं। वेलबींग किस्मत नहीं, स्किल है। और किताब का जो दूसरा हिस्सा है वो इसी बारे में है कि कैसे इन आइडियाज को प्रैक्टिकली लागू किया गया है, जैसे उनका MAP प्रोग्राम,
मैप, मास्टर ऑफ अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी।
हाँ वही, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। वहां लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है वेलबींग बढ़ाने की। छोटे छोटे अभ्यास है पर बड़े असरदार।
जैसे कि?
जैसे एक है 3 अच्छी बातें, या 3 गुड थिंग्स। रोज रात को सोने से पहले बस 3 चीजें लिखनी है जो दिन में अच्छी हुई और क्यों हुई। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना?
हाँ, लगता तो है,
पर रिसर्च दिखाती है कि ये डिप्रेशन कम करता है, खुशी बढ़ाता है। या फिर एक और है ग्रेटिट्यूड विजिट।
अच्छा,
कृतज्ञता भेंट। किसी ऐसे इंसान को एक चिट्ठी लिखना जिसने आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला हो, और फिर जाकर उसे वो चिट्ठी पढ़कर सुनाना।
अरे वाह, ये तो बहुत इंटेंस होगा।
ये सब तरीके हैं पामा को बढ़ाने के।
और स्कूलों वाला आइडिया, पॉजिटिव एजुकेशन।
हाँ, ये भी कमाल का है। ऑस्ट्रेलिया का जिलोंग ग्रामर स्कूल का उदाहरण देते हैं वो। वहां बच्चों को सिर्फ मैथ साइंस नहीं, वेलबींग स्किल्स भी सिखाई गई। अपनी ताकत पहचानना, मुश्किलों से निपटना सीखना।
और नतीजा?
नतीजा ये कि बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बेहतर हुई और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सुधरी। ये दिखाता है कि खुशहाली और सीखना अलग अलग नहीं है।
और वो आर्मी वाला प्रोग्राम भी तो जबरदस्त है। PTSD का इलाज करने के बजाय पहले से ही रेजिलियंस बनाना, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है।
बिल्कुल, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्जर फिटनेस, एक तरह का मेंटल आर्मर तैयार करना। और यहीं पर वो ग्रिट वाला कॉन्सेप्ट भी फिट होता है।
हाँ, एंजेला डकवर्थ वाला, दृढ़ता।
हाँ, लंबे लक्ष्यों के लिए वो जुनून और लगे रहने की जिद। रिसर्च कहती है कि सक्सेस के लिए टैलेंट से ज्यादा ग्रिट जरूरी है, और ये सीधा पर्मा के ए यानी अकम्प्लिशमेंट से जुड़ता है।
ये सब सुनते तो लगता है कि हाँ, वेलबींग वाकई में कुछ ऐसा है जिस पर हम काम कर सकते हैं। पर जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किल वक्त भी आता है, तब क्या? क्या ये सिद्धांत तब भी मायने रखते हैं?
ये बहुत जरूरी सवाल है, और किताब का तीसरा हिस्सा इसी पर बात करता है। और उसमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग और होप देने वाला आइडिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, PTG।
PTG, हमने तो PTSD सुना है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस।
हाँ, ज्यादातर लोग वही जानते हैं कि कोई हादसा हुआ और इंसान टूट गया। लेकिन PTG कहता है कि कई बार किसी बड़े संकट या ट्रॉमा से गुजरने के बाद लोग पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और जिंदगी को ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले बन जाते हैं।
सच में? मतलब मुश्किल हमें तोड़ती नहीं, बना भी सकती है?
हमेशा नहीं, जाहिर है, पर ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसके लिए जरूरी है कि इंसान उस अनुभव में कोई मीनिंग ढूंढ पाए और उसे सोशल सपोर्ट मिले। लेकिन ये आइडिया ही अपने आप में कितनी उम्मीद देता है ना?
हाँ बिल्कुल, और ये वेलबींग का असर सिर्फ मन पर नहीं, तन पर भी होता है।
ओ हाँ बिल्कुल, सेलिगमैन बहुत सारे एविडेंस देते हैं कि आशावाद, पॉजिटिव इमोशंस, अच्छे रिश्ते, ये सब आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। हार्ट डिजीज का रिस्क कम, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, यहाँ तक कि उम्र भी लंबी। हमारा मन और तन अलग नहीं है, एक सिस्टम है।
और फिर वो इस आइडिया को सरकारों तक ले जाते हैं कि देशों को सिर्फ जीडीपी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अपनी जनता की वेलबींग भी नापनी चाहिए और उसे बढ़ाने की पॉलिसी बनानी चाहिए।
हाँ, भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स तो फेमस है ही, यूके ने भी इस पर काम किया है, और उनका वो टारगेट 51 वाला लक्ष्य,
टारगेट 51,
हाँ, कि 2051 तक दुनिया की 51% आबादी फ्लोरिश कर रही हो। सोचिए कितना एम्बिशियस विजन है।
वाकई ये तो वेलबींग को एक पर्सनल चीज से उठाकर एक एक सामाजिक, एक ग्लोबल लक्ष्य बना देता है।
बिल्कुल, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कुछ मेन मैसेजेस क्या निकलते हैं इस किताब से?
पहला तो शायद यही कि खुशहाली सिर्फ फील गुड करना नहीं है, वो परमा के 5 पिलर्स का बैलेंस है, PERMA।
हाँ बिल्कुल। दूसरा कि ये वेलबींग सीखी जा सकती है, ये कोई किस्मत की बात नहीं, ये स्किल्स हैं जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं, कृतज्ञता, आशावाद, ग्रिट, ये सब।
तीसरा कि हमें सिर्फ अपनी कमजोरियों को ठीक करने पे ही नहीं, बल्कि अपनी ताकतों को पहचानने और इस्तेमाल करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
सही कहा, स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। चौथा कि ये सब बातें हवा में नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव एक्शन है।
और पांचवा कि ये आइडिया सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये हमारे स्कूलों को, हमारे वर्कप्लेस को, हमारी कम्युनिटीज को, यहाँ तक कि देशों को बेहतर बना सकते हैं।
हाँ, और जब हम इसे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कई चीजें तो पहले से ही हमारी जड़ों में है, है ना? जैसे रिश्तों आर पर जोर देना, जिंदगी में एक अर्थ एम ढूंढना।
हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ परिवार, समाज, त्योहार, ये सब कनेक्शन और मीनिंग ही तो देते हैं। शायद हमें थोड़ा अकॉम्प्लिशमेंट को सिर्फ नौकरी या पैसे से ना जोड़कर किसी स्किल में मास्टरी या समाज के लिए कुछ करने से भी जोड़ना चाहिए।
सही बात है, और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना, वो जो कम्युनिटी सपोर्ट है, वो तो एक तरह का बिल्ट इन PTG जैसा है।
सही कहा। अच्छा, किताब में कुछ यादगार कोट्स या आइडियाज भी होंगे?
हाँ कई हैं, जैसे एक है कि वेल बीइंग सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होती, ये अच्छा महसूस करने के साथ साथ असली दुनिया में मीनिंग, अच्छे रिश्ते और उपलब्धि का कॉम्बिनेशन है। मतलब सिर्फ अंदर अंदर खुश होना काफी नहीं, बाहर एक्शन भी चाहिए।
एक और था ना, वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स वाला।
हाँ, अच्छा जीवन जीने का मतलब है अपनी प्रमुख शक्तियों, सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का रोजमर्रा के मुख्य कामों में इस्तेमाल करके खुशी पाना। मतलब जो चीजें आप नेचुरली अच्छे से करते हैं और एंजॉय करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना।
और ये वाला भी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, ये पॉजिटिव एक्शन के बारे में है।
ये बार बार आता है।
हाँ, क्योंकि ये जरूरी है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा,
कोई शॉर्टकट नहीं है।
और वो जो सवाल पूछते हैं, क्या सही हुआ, क्या काम कर रहा है, लोगों की ताकत क्या है,
बिल्कुल,
ये प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय सोल्यूशन और स्ट्रेंथ पर फोकस लाता है।
बिल्कुल। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं, क्या कर सकते हैं?
हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं।
जैसे एक तो वो 3 अच्छी बातें वाला अभ्यास, रोज रात को 2 मिनट, बहुत मुश्किल नहीं है।
हाँ, ये किया जा सकता है।
या फिर अपनी जो टॉप स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें पहचानना, VIS सर्वे है, ऑनलाइन फ्री है, अपनी 5 स्ट्रेंथ्स पता करें और सोचें कि उन्हें रोज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, और रिश्तों के लिए वो ACR वाला कुछ था?
हाँ, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग, जब कोई आपके साथ कोई अच्छी खबर शेयर करे तो सिर्फ हाँ अच्छा है ना कहें, पूरे उत्साह से सुने, सवाल पूछें, उनकी खुशी में शामिल हों, इससे रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं।
ये छोटी छोटी चीजें हैं पर शायद असर बड़ा होता होगा।
बिल्कुल, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, हम अपने बच्चों को ग्रिट सिखा सकते हैं, उनकी तारीफ सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, कोशिश के लिए कर सकते हैं, अपने ऑफिस में थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल वेलबींग पर भी ध्यान दे सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी टेक अवे है वो ये है कि वेलबींग हमारे कंट्रोल में है, ये कोई बाहरी चीज नहीं जिसे हमें ढूंढना है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम खुद बना सकते हैं, PERMA पर काम करके। यह हमें अपनी जिंदगी का चार्ज लेने की पावर देता है।
और मेरे लिए शायद सबसे स्ट्राइकिंग आइडिया वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का ही है। ये जानना कि बुरे अनुभवों से भी कुछ अच्छा निकल सकता है, कि हम उनसे और मजबूत बन सकते हैं, ये बहुत उम्मीद देता है। और हाँ, वेल बीइंग को नेशनल एजेंडा बनाने का सपना, वो बहुत इंस्पायरिंग है।
बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ जाते हैं, आपकी वो कौन सी ताकत है जिसे आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सा रिश्ता है जिसे आप और गहरा बना सकते हैं, शायद फ्लॉरिश करने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।